नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी।
सेंसस दो फेजेस में होगा। फेज वन में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज टू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा भारत के कानूनों के हिसाब से।
श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने कोयला लिंकेज नीति कोल सेतु में सुधारों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी अनुमोदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय न केवल नारियल किसानों की आय बढ़ाएगा बल्कि कोपरा उत्पादन को भी प्रोत्साहन देगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश भर के किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार देश में ही विमान विनिर्माण शुरू करने जा रही है। श्री नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूसी विमान कंपनी सुखोई के साथ संबंधित प्रौद्योगिकी हासिल करने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में विमान किराया विनियमन संबंधी प्रस्ताव के जवाब में नागर विमानन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास असाधारण परिस्थितियों में विमान किराए पर सीमा लागू करने का अधिकार है ताकि यात्रियों को अप्रत्याशित किराए का सामना न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र में कल केन्या के नैरोबी में भारत द्वारा प्रस्तावित जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना विषय को अपनाया गया। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ जिससे विश्व स्तर पर जंगल में आग लगने के बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की वैश्विक मान्यता की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद लगभग समाप्त होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 505 माओवादियों को मार गिराया है जबकि 2386 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1901 को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में 69 सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं जबकि नियाद निल्ला नार योजना पुनर्वास नीति ने मुख्यधारा समाज में एकीकरण को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास में सहायता के लिए आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 3 साल तक 10,000 रूपये का मासिक सहायता देने की योजना शुरू की गई है। सिक्किम विधानसभा ने राज्य के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। सदन ने राज्य सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति की हाल में सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों का अनुमोदन किया। वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस विशेषज्ञ समिति में शिक्षाविद, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वाहन अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस महीने की 15 तारीख को समिति की पहली बैठक होगी। आज पूरा देश उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने 24 वर्ष पहले 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले में संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य संसद भवन में सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मौसम विभाग ने उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उड़ीसा में भी शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।